ओम शांति। आज 30 दिसंबर 2023 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुनें और मंथन करें। आज की मुरली का सार, मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, शुभ काम में देरी नहीं, शुभ काम में कभी देरी नहीं करनी है। अपने भाई बहनों को ठोकर खाने से बचाना है। हमारे भाई बहन ठोकर खा रहे हैं क्या?
मतलब इधर तक भटक रहे हैं।
कहाँ भटक रहे हैं?
कभी वहां तीर्थ करने जा रहे हैं, कभी मंदिरों में जा रहे हैं।
भगवान को ढूंढने के लिए कितने धक्के खा रहे हैं, गुरुओं के पास, साधुओं के पास, संतों के पास ये धक्के खाना होता है क्या? मंदिर में जाना
कोई भगवान थोड़ी ना, वो तो मूर्ति,
वो तो पत्थर की मूर्तियां हैं, वो तो पानी के झरने हैं, ठीक है नहीं? वहां जा जाकर बेचारे अपने टिप्पण घिसा रहे हैं, पैसे खर्च कर रहे हैं, समय बर्बाद कर रहे हैं, उनका भविष्य अंधेरे में है। बेचारे अंधे भी हैं और अंधेरे में भी हैं। अब उनको बचाना है, क्या करना है उसके लिए? भू भू करना है, ज्ञान की भू भू करना है। उनको ज्ञान थोड़ा थोड़ा रोजाना डालते रहना है और फिर उनको आप समान बनाना है। उनको आप समान, सारी दुनिया क्या आप समान बनाने में नहीं लगी हुई? नेचुरल है ये। जो मंदिर में जा रहा है कहता मंदिर चलो, वही है। जो जिस गुरुजी के पास जा रहे हैं, जो जहां एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, जहां जो कुछ भी करने जा रहे हैं, वो औरों को भी कहते हैं मैं सबसे अच्छा हूं, मेरे साथ चलो, ठीक है नहीं करे? चाहे वो शराबी है भाई,
कौन सा स्थान है जहाँ पर जो तीर्थ स्थानों पर जाते हैं,
हाँ,
और वो जो है उसकी निंदा तो कोई नहीं करता, सब प्रशंसा ही करते हैं, कुछ आशा लेके ही जाते हैं, इसी मुताबिक यहाँ भी तो आके बैठते हैं।
फिर जो शराब पीते हैं वो भी कहेंगे शराब पीना बेस्ट होता है, रोजाना हमारी संगत सबसे बेस्ट है, मतलब वो सबको अपने जैसा ही बनाने का प्रयास करते हैं। तो बाबा भी ये कहता है कि तुमने भी सबको अपने जैसा बनाना है। अब क्या है कि हर एक समझता है मैं बेस्ट हूं, मैं राइट हूं, कोई भी अपने आप को गलत
नहीं समझता,
ठीक है? तो अब गलत और सही की परख कौन दे सकता है? सिर्फ परमात्मा ही दे सकता है, और तो कोई दे नहीं सकता। अब हमें गलत और सही की परख कितनी मिली है, वो परख हमने भू भू करनी है। बात समझ में आई? मतलब हमने उनके साथ, बाकी हमें समझ में आ गया कि कौन आना है, कौन नहीं आना, क्या करेगा क्या नहीं करेगा, उसके लिए हमें परेशान
नहीं होना।
हाँ, मतलब हमने जो बाबा की बातें हमें पसंद आई हैं वो उनके साथ शेयर करते रहे। बाकी तो हर एक आत्मा अपना पार्ट एक्यूरेट बजा रही है, मंदिर जा रही है, मस्जिद जा रही है, शराब खाने जा रही है, बुचड़ खाने जा रही है, जहां मर्जी जा रही है, ठीक है, ड्रामा है ये। पर तो मुझे उनको अपनी समझ के मुताबिक भू भू करना है, मानना या ना मानना वो उस आत्मा का काम है। और ये सभी आत्माएं मेरे भाई हैं, ये हमारी बुद्धि में रहे। वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो उनका रोल है, ठीक है? प्रश्न, किस बात का अनर्थ होने से भारत कोड़ी मिसल बन जाता है? किस बात का अनर्थ हो जाता है? अनर्थ माना जो उसका अर्थ होना चाहिए वो ना लेकर कुछ और अर्थ ले लिया जाता है, तब भी जो है ना ये भारत क्या हो जाता है? कोड़ी मिसल हो जाता है। उसका अर्थ कुछ और है, हमने उसका अर्थ कुछ और ले लिया। जैसे कि आप सुनते हैं, कहते हैं हर बात के मायने दो, सुनाते हैं ना बहुत सारे चुटकुले, बहुत सारी बातें बनी हुई हैं। मतलब आप उसको अच्छा भी ले सकते हो, उस बात को गलत भी ले सकते हो, गलत लेना माना अनर्थ। आपने किसी भी बात का गलत मीनिंग निकाल लिया तो क्या होगा, बेड़ा गर्क होगा, दुखी होंगे ही होंगे। अब कौन सी बात है, सबसे बड़ा अनर्थ हुआ जो गीता के स्वामी को भूल गए। गीता ज्ञान से जन्म लेने वाले बच्चे को गीता का स्वामी कह दिया। गीता क्या है, माता, किसकी माता, गीता माता है किसकी, पहला बच्चा गीता का कौन, श्री कृष्ण। बाप, बाप कौन, शिव बाबा। बस यही गड़बड़ हो गया। अब बाप की जगह बच्चे को क्यों किया, क्योंकि बाप तो दिखता को नहीं, कृष्ण दिखा, गीता के साथ कृष्ण दिखा, तो दिखा कृष्ण तो बताएंगे भी कृष्ण, क्योंकि अपरमात्मा तो दिखे नहीं आंखों से। इसी एक अनर्थ के कारण सभी बाप बाप से बेमुख हो गए। भारत कोड़ी तुल्य बन गया। अब तुम बच्चे बाप से सम्मुख से में सच्ची गीता सुन रहे हो, सामने सुन रहे हो, पीछे नहीं सुन रहे हो। जिस गीता ज्ञान से ही देवी देवता धर्म स्थापन होता है, तुम श्री कृष्ण के समान बनते हो, तुम श्री कृष्ण के समान बनते हो। गीता किसने, सॉरी गीत किसने ये सब खेल रचाया, फिर पता नहीं कहां जाके छुपकर बैठ गया, बताता भी नहीं मैं कहां बैठा हूं, वो जाके पूछ तो ले भी क्या क्या चाहता है तू हमारे से, क्यों दुखी कर रखा है तूने। ओम शांति। ब्राह्मण कुलभूषण बच्चे समझ गए हैं कि बरोबर हमको स्वर्ग में बहुत अपरम अपार सुख थे, बहुत अपरम अपार सुख थे, हम बहुत खुशी में थे, हम जीव आत्माएं स्वर्ग में बहुत मस्ती में थे। फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, रंग रूप की माया आकर चटकी, चटकी माना चिपक गई, मिल गई, हमने उसे अपने साथ जोड़ लिया, इसको चटकना बोलते हैं। विकारों के कारण ही इसको नरक कहा। अब जब माया आकर हमें चटक गई तो हम विकारों में, विकारों को हमने पसंद किया, ये तो बहुत अच्छी बात है, इसको नरक कहा जाता है। नरक तो सारा है। अब ये जो भ्रमरी का मिसाल देते हैं कि भ्रमरी और ब्राह्मणी दोनों का काम एक है, दोनों का काम एक है। भ्रमरी का मिसाल तुम्हारे ऊपर है, भ्रमरी कीड़े ले जाती है, घर बनाकर उसमें कीड़े डाल देती है, ये भी नरक है। सब कीड़े हैं, दुनिया भी क्या है, नरक है, सब कीड़े हैं, परंतु सब कीड़े देवी देवता धर्म वाले नहीं, देवी देवता धर्म वाले नहीं है। ये बात समझ में आई है, क्यों ऐसा होता है। अब हमें तो पता नहीं कौन देवी देवता धर्म वाला है कौन नहीं है, हमें भ्रमरी की तरह क्या करना है, कीड़ों को भू भू करना है। अब जो हमारा होगा वो बन जाएगा, जो हमारा नहीं होगा वो नहीं बनेगा। अब इस भ्रमरी के बारे में सच क्या है, झूठ क्या है, जो दुनिया की बातें हैं वो तो अलग अलग हैं, परंतु जो इस बात को बाबा ने कहा है उसके राज को हमें समझना है, ठीक है। अब भ्रमरी कहाँ से कीड़े लाती है, नाली से कीड़े लाती है, वो कीड़े क्या होते हैं, कैसे लाकर रखती है, इस विषय में हमें जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर एक अपना अपना मत देगा। परंतु वो अंडे जहां दे के आती है, उसके अंडों के लार्वा के साथ दूसरे के भी मिक्स हो जाते हैं और वो नहीं पहचान पाती, उसके कारण वो उनको ले आती है और अंडे दिए और वो धीरे धीरे बनेंगे तो वही ना जो हमारे कुल के होंगे, जो हमारे कुल के नहीं होंगे तो वो नहीं बनेंगे।
उसने घर बनाया है, उसमें अंडा क्यों नहीं दे रही?
देखिए भाई जी, अंडा सूखी जगह पर नहीं पलता, उसको चाहिए नमी और वो नमी में अंडा देके आती है।
तो आपने भीमरी को देखा, मट्टी को बना के रखती
है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल देखा है, वो वहां ला करके उसमें रखती है। अब ये जो तितली होती है, ये तितली भी पानी में या जहां अंडा दिया जाता है वहां नहीं होती है, वहां से उसको दूसरी जगह ले जाया जाता है तब होता है। और आपको पता है या नहीं पता, कोयल कब हाँ भाई मेरे अंडा जो है ना पानी में स्थिर रहता है, पानी से ही वो खुराक लेता है, पत्तों से खुराक लेते हैं, कोई जीव है वो पत्तों पर देते हैं ताकि वो पत्ते खाएं, ठीक है नहीं, तो पत्ते तक वहीं पर खा सके, वो पानी से अपना खुराक ले सके, क्योंकि सूखी जगह में मिट्टी में रख दिया, वहां उनको खुराक तो मिलने वाली नहीं है। तो इसलिए हर एक का जीव का अपना अपना नियम है। कोयल कभी अपने बच्चों को नहीं पालती, कोयल के बच्चों को कौन पालता है? कौवा पालता। तो इसी प्रकार से मतलब कैसे कैसे होना है, क्या होना है, ये प्रकृति का वंडरफुल राज है। हम उधर अपने समय को, क्योंकि कोयल क्या करती है, अपने अंडे कोयल के उसमें दे आती है घोंसले में। अब वो बेचारा कहता है हाँ कौन से मेरे हैं, किसको तोड़ूं, वो इस मोहवश सारे पाल देता है। उड़ते हैं तो अपने आप काले, तो भी बेचारा क्या करे, वो भी काले और वो भी काले। तो यही बेचारी इसके साथ भ्रमरी के साथ भी होता है, वो उठा के अंडे दे के आती है क्योंकि वो डेवलप हो जाए फिर उनके लिए घर बना लेती है, फिर उनको ला करके उसमें रख देती है ताकि अब जो है ना अपने आप बढ़ो। अब देवी देवता धर्म के कीड़े कौन है, ये कैसे पता पड़े कि ये ब्रह्मा वंशी ब्राह्मणिया हैं जो बैठ भू भू करती हैं, जो देवता धर्म के होंगे वही ठहर सकेंगे, जो नहीं होंगे ठहरेंगे नहीं। नर्कवासी कीड़े तो सभी हैं, इस समय सभी नर्कवासी, हम भी नर्कवासी थे, बाकी भी सब नर्कवासी हैं, और जब तक उनको बाप ना मिले स्वर्गवासी बनने का रास्ता ना मिले। सन्यासी भी यही कहते हैं कि नर्क का ये सुख काग विष्ठा के समान है, उनको ये पता नहीं कि स्वर्ग में अथाह सुख है। यहां पर 5% सुख और 95% दुख है, 5% भी बाबा ने ज्यादा कहा है, ठीक नहीं। गुरु नानक 500 साल पहले आए वो 10% पवित्र थे और अब से 250 साल पहले 5% पवित्र थे, अब तो 0 पर पहुंचे हुए हैं। पवित्रता नाम की चीज ही नहीं है, तभी तो नर्क बना है दुनिया, ठीक है करें, क्योंकि 100 साल जो होते हैं वो जो है ना 2% होता है 100 साल। अब विनाश में तो कोई टाइम रहा ही नहीं, अब तो 0 पर पहुंच चुके हैं, ठीक है। जिस समय बाबा आते हैं उस समय इस पृथ्वी पर 2% जो है ना पवित्रता होती है, 100 की जगह 2%। तो इसको कोई स्वर्ग नहीं कहा जाएगा, स्वर्ग में तो दुख की बात ही नहीं रहती। यहां तो अनेक शास्त्र, अनेक धर्म तथा अनेक मते हो गई हैं। स्वर्ग में तो एक ही अद्वैत मत है, स्वर्ग में क्या है, एक ही अद्वैत मत। अद्वैत का मतलब होता है एक मत, और द्वैत मत का मतलब होता है दो मत। एक हाथ से ताली कभी नहीं बजती, जब दो हाथ होते हैं तो ताली बजती है। तो बाबा कहते हैं वहां कोई झगड़ा नहीं होता, वहां सिर्फ एक ही मत होती है, और वो भी किसकी होती है, शिव बाबा की। क्योंकि वहां आते ही वो हैं जो शिव बाबा की मत पर 100% चलने वाले हैं। 99% होने का मतलब क्या हुआ कि 1% कोई और मत आ गई है। 99% होने का मतलब यह है कि 1% कोई दूसरी मत आ गई है, परंतु 99% एक मत वाले हैं फिर भी अच्छा चलता है। 51% तक, 50% तक भी जाकर के द्वैत शुरू होता है, आधे आधे हो जाते हैं ना, तो फिर खंड बनते हैं। आज अनेक धर्म अनेक मते हो गई हैं। स्वर्ग में तो एक ही अद्वैत देवता मत है, एक ही धर्म है। तो तुम हो ब्राह्मणिया, तुम भू भू करती हो, फिर जो इस धर्म के हैं वे ठहर जाते हैं, अनेक प्रकार के हैं। कोई नेचर को मानते हैं, कोई साइंस को मानते हैं, क्योंकि मत अपने अपनी है। तो कोई कहते हैं ये सृष्टि कल्पना मात्र है, ऐसा ऐसी वार्तालाप वह यहां ही चलती है, सतयुग में नहीं चलती। ये बेहद का बाप प्रजापिता ब्रह्मा के मुख कमल से अपने बच्चों को बैठ समझाते हैं, अपने बच्चों को बैठ समझाते हैं कि तुम मेरे पास थे, अब फिर मेरे पास आना है। इसमें शास्त्रों की तो बात ही नहीं उठती। क्राइस्ट तथा बुद्ध आते हैं, वे भी आकर सुनाते हैं, उस समय तो शास्त्रों का प्रश्न उठ ना सके। क्राइस्ट बाइबल पढ़ता था, क्या बाइबल का प्रश्न नहीं उठता? बाप कहते हैं बच्चे तुम अपनी हालत तो देखो, माया रावण ने तुम्हारी कैसी हालत कर दी, इस माया रावण ने तुम्हारी कैसी हालत कर दी है। समझते भी हैं कि हम आसुरी रावण संप्रदाय हैं, रावण को जलाते हैं परंतु जलता नहीं। वंडरफुल बात है, परंतु जलता नहीं। रावण को जलाना बंद कब होगा ये मनुष्यों को पता नहीं। तुम हो ईश्वरीय देवी संप्रदाय, तुम बच्चे हो हमारे, अब मैं फिर आया हूं तुम बच्चों को राजयोग सिखलाने। अनेक धर्म है, उनमें से निकालने में कितनी मेहनत लगती है। गीता भी कहां से आई। आदि सनातन धर्म जो था उनकी निशानियां कहां से निकली, जो फिर ऋषि मुनियों ने बैट बनाई, जो अब तक सुनते आए हैं, वेद किसने गाए, वेदों का बाप कौन है? बाप कहते हैं कि गीता का भगवान मैं हूं, गीता माता रची, शिव बाबा ने उससे जन्म लिया, श्री कृष्ण ने। गीता माता किसने रची? और जन्म लिया श्री कृष्ण ने। उनके साथ राधे आदि सब आ जाते हैं, ये भी सब बच्चे हैं, वो भी आ जाते हैं, पहले हैं बहे हैं ही ब्राह्मण। हमारी मां भी वंडरफुल, कितनी मां है हमारी, एक ब्रह्मा मां हो गई, एक गीता मां हो गई। असली मां कौन सी कौन सी गीता? ये गीता मां है, क्योंकि ब्रह्मा का भी जन्म किससे हुआ? गीता से हुआ। ब्रह्मा भी तो कृष्ण बनता है, ब्रह्मा ने भी गीता से क्या बना? कृष्ण बना। ये दो दो माँ कहाँ से बना दी शिव बाबा खिचड़ी पकाता है, चार भी बना सकता है, सबको बना लेता है। कहते है तुम सा पार्वतिया मेरी सकी सकी सजनिया हो, हाँ ठीक बात है, सबसे सबको बना लेता है अपना। तुम बच्चों को निश्चय है कि वो हमारा मोस्ट बिलवेड बाप है, जिसको सब कहते हैं ओ गॉड फादर, रैम करो, भक्त पुकारते हैं कैसे दुख से छूटे हैं। अगर भगवान सर्वव्यापी हो तो फिर पुकारने की बात ही नहीं। मुख्य है गीता की बात, मुख्य है गीता की बात, कितने यज्ञ आदि रचते हैं, अब तुम ऐसे पर्चे छपाओ, अब कितना अनर्थ हो गया, जहां तहां देखो गीता लिखते रहते हैं। गीता किसने रची, किसने गाई, कब गाई, किसने बनाई? गीता किसने रची, गीता किसने गाई, गीता कब गाई, गीता किसने बनाई, कुछ भी पता नहीं, दुनिया में कुछ भी पता नहीं। और इन प्रश्नों के जवाब कौन देगा, जिसको बाबा से प्यार होगा। और इन प्रश्नों का जवाब सब तक कौन पहुंचाएगा, जिसको बाबा से प्यार होगा। नहीं, जो सुनकर अपने अंदर रखेगा उसे बाबा से प्यार नहीं, उसे दूसरों को बताता नहीं, जिसको नहीं बताता उससे भी उसे प्यार नहीं। ठीक बात है, आप जिसको नहीं बताएंगे, आपको तो पता लग गया, आपने अंदर रख लिया, पर तो आपने जिसको नहीं बताया तो उसके साथ भी समझ लो कि आपको प्यार नहीं, बड़ा काम खराब है। ऐसे स्कूल में नहीं पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए ऐसे स्कूल में, सोचो पढ़ना चाहिए। चलो भाई आप राजी हैं तो मैं भी आपके साथ राजी हूं, ठीक है ना, पढ़ना तो ऐसे ही स्कूल में चाहिए। श्री कृष्ण का भी यथार्थ परिचय नहीं, वो भी कौन देगा, बस कह देते हैं जिधर देखो सर्वव्यापी तू ही तू, लाली देखन मैं गई जित देखूं तित लाल, बस कृष्ण ही कृष्ण। राधे के भक्त क्या कहते हैं, राधे ही राधे,
राधे राधे,
सर्वव्यापी राधे ही राधे, कण कण में राधे राधे, उधर भी राधे इधर भी राधे। और गणेश के लिए क्या कहेंगे, गणेश सर्वव्यापी है, सब जगह है, कण कण में है, एक ही मथुरा शहर में। कोई कहेंगे श्री कृष्ण सर्वव्यापी है और कोई कहेंगे कौन, हाँ जी राधा सर्वव्यापी है, राधा सर्वव्यापी है। अब क्या कर सकते हैं, दो दो सर्वव्यापी हैं, कितनी मूझ हो गई है, एक की मत ना मिले दूसरे से, एक की घर में बैठ बाप का गुरु अलग और बच्चे का गुरु अलग। वास्तव में गुरु किया जाता है वानप्रस्थ में, बाप कहते मैं भी आया हूं इनकी वानप्रस्थ अवस्था में। दुनिया में तो जितना जो बड़ा गुरु होता है उनको उतना नशा रहता है। आदि देव को महावीर भी नाम दिया है, हनुमान को भी महावीर कहते हैं। महावीर तो तुम शक्तियां हो, दिलवाड़ा मंदिर में शक्तियों की शेर पर सवारी है और पांडवों की हाथियों पर। मंदिर बड़ा युक्ति से बना हुआ है, हू बहू तुम्हारा यादगार है, तुम तो उस समय होंगे नहीं जो तुम्हारा चित्र दें। मंदिर तो द्वापर में बने, मंदिर तो द्वापर में बने हैं तो तुम्हारे चित्र कहां से आएंगे। सर्विस तो तुम अभी कर रहे हो, बातें सब अभी की हैं, उन्होंने बाद में शास्त्र बनाए हैं। हम अगर गीता का नाम ना ले, हम अगर गीता का नाम ना ले तो मनुष्य समझेंगे पता नहीं ये कौन सा नया धर्म है। चलाकी समझ में आई है बाबा की, शरारत समझ में आई है बाबा की, नहीं क्या कहा है बाबा ने?
गीता का नाम नहीं लेंगे
क्या? कोई ना आवे, हम भी ना आते, बाहर से चले जाते। हमने समझा ये गीता, ये वाली गीता कह रहे हैं, गीता में लिखा है, गीता में लिखा है, हम आ गए। ये तो अब समझ में आ रहा है कि ये तो चलाक है बाबा, नहीं हाँ ऐसे फंसा लिया हमें, थे नहीं, अब हम छोड़ भी नहीं सकते। और कितना चुपचाप, कितने सालों तक नहीं बताया, देखो ना, एक बार, दो दिन, सात दिन, छह दिन, नहीं सर, हमें अब जाके बताया ये गीता भी क्या है। गीता का नाम मैंने लिया सिर्फ इसलिए लिया ताकि तुम समझो और इधर आ जाओ, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये असली गीता है और ये नकली गीता। देखा ऐसी चलाकी चलता है बाबा, और कोई चल नहीं सकता ऐसी चलाकी। ये कौन सा नया धर्म है, कितनी मेहनत लगती है। वे इस दुनिया में सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं, तुमको तो नई दुनिया के लिए बाप तैयार करते, तुमको तो नई दुनिया के लिए बाप तैयार करते हैं। बाप कहते हैं मेरे जैसा, मेरे जैसा कर्तव्य कोई कर ना सके। सब पतितों को पावन बनाना पड़ता है, सब पतितों को पावन बनाना पड़ता है, अब तुम बच्चों को वार्निंग देने देनी पड़े। अब वार्निंग, अब बाबा हमें वार्निंग भी दे रहे, बताओ फंसा के अपना बना के और अब वार्निंग भी दे रहा है साथ में, पता है ना भागेगा कहां, तब वार्निंग दे रहा है। भारत में कितना अनर्थ हो गया है, जिस कारण ही भारत कोड़ी तुल्य बना है। बाप ने गीता माता द्वारा श्री कृष्ण को जन्म दिया, उन्होंने फिर श्री कृष्ण को गीता का स्वामी बना दिया है। गीता का स्वामी तो शिव है, उसने गीता से श्री कृष्ण को जन्म दिया। तुम जब सब संजय हो, अब हमें क्या बना दिया, संजय। संजय क्या करता है, किसको बताता है, धृतराष्ट्र को बताता है। धृतराष्ट्र कौन है, मिसालिक तो बात कर रहा है बाबा। धृतराष्ट्र कौन है, हां जी, अंधे, वो अंधा था ना, और तुम संजय बने हो और तुम्हारे सामने सारी दुनिया अंधी है और अंधों को तुमने समझाना, इसलिए आपका नाम दिया संजय, वरना पता है उसको सारे नाम। हाँ, आप सब संजय तब हो जब आप अंधों को जाकर ये रोशनी दो, ज्ञान की रोशनी दो। सुनाने वाला एक शिव बाबा है, नहीं, जो सुना रहा है युद्ध के मैदान में, और आप सुन के सुना रहे हो अंधों को, याद रखना है, क्योंकि कृष्ण तो युद्ध के मैदान में ज्ञान सुना रहा था ना, शिव बाबा दुनिया के युद्ध के मैदान में बच्चों के सामने जो समस्याएं आई हैं उनका समाधान करने की विधि सिखा रहे हैं, और आपने जाके सुनाना है अंधों को। तो प्राचीन देवी देवता धर्म को रचने वाला कौन, ये सब लिखने में बुद्धि चाहिए। लिखो, वीडियो बनाओ, मतलब काम कितना सारा दे देता है, सोचो। ये सब लिखने में बुद्धि चाहिए। गीता से हम जन्म ले रहे हैं, मम्मा राधे, और ये फिर श्री कृष्ण बनेगा। ये गुप्त बातें है ना, ब्राह्मणों का जन्म कोई समझ ना सके, बात ही है श्री कृष्ण और परमात्मा की। ब्रह्मा, श्री कृष्ण और शिव बाबा, ये सब बातें गुहे है ना, इन बातों को समझने वाला बड़ा बुद्धिवान चाहिए। जिनका योग पूरा होगा उनकी बुद्धि पारस बनती जाएगी। भटकने वाले की बुद्धि में ये ठहर ना सके, बाबा तुम बच्चों को कितनी ऊंची नॉलेज दे रहे हैं। विद्यार्थी अपनी बुद्धि भी चलाते हैं ना, तो अभी बैठकर लिखो। शुभ कार्य में देरी नहीं करनी चाहिए। हम सागर के बच्चे अपने भाई बहनों को बचाएं। बेचारे ठोकर खाते रहते हैं, कहेंगे बीके इतनी रड़ियां मारती हैं, कुछ तो बात होगी, कुछ तो बात होगी। लाखों पर्चे छपवाकर गीता पाठशालाओं आदि में बांटो। भारत अविनाशी खंड है और सर्वोत्तम तीर्थ है। जो बाप सबको गति, सबको सदगति देते हैं, उनके तीर्थ स्थान को गुम कर दिया है तो फिर उनका नाम निकालना पड़े। फूल चढ़ाने लायक एक शिव ही है, बाकी तो सब व्यर्थ है। गीता पाठशालाएं बहुत हैं, तुम वेश बदल कर वहां जाओ, फिर भल समझे वे बीके होंगे। पहले वेश बदल कर जाओ, ठीक है, फिर उनको पता तो लग जाएगा, अच्छा ये ब्रह्मा कुमारी आ गई है, बस समझे ये बीके होंगी। ऐसे प्रश्न कोई पूछ ना सके जैसे प्रश्न ये ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां पूछती हैं, ऐसे प्रश्न कोई और पूछ ना सके। अच्छा
मीठे मीठे
नहीं, मीठे नहीं कर रहा आज, अच्छा ही कर दिया, हम खुश हो गए। मैं टाइम देखा, तुम समझते हो कि शिव बाबा ब्रह्मा तन से बैठ ये बातें समझाते हैं। बीच में बाबा अच्छा करके ना बाबा को याद आ जाता है कि कुछ और भी बताना है। जो बाबा स्वर्ग का मालिक बनाने वाला है वो अभी आया हुआ है। जब तक ब्राह्मण ना बने तब तक देवता बन ना सके। ब्राह्मण कुल देवता से भी ऊंच है, सबकी आत्मा पावन हो रही है, तुम फिर नई दुनिया में पुनर्जन्म लेंगे। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। रात्रि क्लास ये 12 जनवरी 1969 को कराई और 18 जनवरी 1969 को शरीर छोड़ा। 6 दिन पहले की क्लास है। एक हमें 13 दिन की नोट करके रखी है, वो उसमें 4999 साल वाली बात बताई थी और ये है सिर्फ 6 दिन पहले। तुम बच्चे एक बाप की याद में बैठे हो, एक की याद में रहना, इसी को कहेंगे ए व्यभिचारी याद। अगर यहां बैठ भी दूसरे कोई को या की याद आती है तो व्यभिचारी चारी याद कहेंगे। यहां बैठकर भी शिव बाबा के सिवाय कोई और याद आया तो क्या बन गए आप? व्यभिचारी। खाना पीना रहना एक घर में और याद दूसरे को करना, ये तो ठगी हो गई, धोखा हो गया। भक्ति भी जब तक एक शिव बाबा की करते हैं तब तक अव्यभिचारी भक्ति हुई। फिर औरों को याद करना, ये व्यभिचारी भक्ति हो जाती है। अभी तुम बच्चों को ज्ञान मिला है एक बाप कितनी कमाल करते हैं, हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, तो उस एक को ही याद करना चाहिए। मेरा तो एक दूसरा, हाँ दूसरा ना कोई। परंतु बच्चे कहते हैं शिव बाबा की याद भूल जाती है। वाह, बाबा कहते वाह, भक्ति मार्ग में तो तुम कहते थे हम एक की ही भक्ति करेंगे, वही पतित पावन है, और तो कोई को पतित पावन नहीं कहा जाता, एक को ही कहा जाता है, वही ऊंचते ऊंच है। अभी तो भक्ति की बात ही नहीं, बच्चों को ज्ञान है, ज्ञान सागर को याद करना है, ज्ञान सागर को याद करना है। भक्ति मार्ग में कहते हैं आप आएंगे तो हम आपको ही याद करेंगे, तो ये बातें याद करनी चाहिए। हर एक अपने से पूछे, हर एक अपने से पूछे हम एक बाप को याद करते हैं, कैसे पूछे? अनेक मित्र संबंधियों आदि को याद करते हैं, एक बाप से ही दिल लगानी है। इन मित्र संबंधियों को याद नहीं करना, उनका कहना नहीं मानना। अगर दिल और तरफ गई तो याद व्यभिचारी हो जाती है। व्यभिचारी का मतलब होता है वैश्या, जिसका अनेकों से रिश्ता। व्यभिचारी शब्द जो है ना इतना खतरनाक है, हाँ बहुत डेंजरस। और हमने किसी दूसरे को याद किया गई काम से, कोई दूसरा है ही नहीं, नाम ही बिगाड़ देता है एकदम। बाप कहते हैं बच्चे माम एक कम याद करो, फिर वहां तुम्हें देवी संबंधी मिलेंगे, नई दुनिया में सभी नए मिलेंगे, तो अपनी जांच रखनी है कि हम किसको याद करते हैं। बाप कहते हैं तुम मुझ पारलौकिक बाप को याद करो, मैं ही पतित पावन हूं, कोशिश कर और तरफ से बुद्धि योग हटाकर बाप को याद करना है। जितना याद करेंगे उतना ही पाप कटेंगे, ऐसा नहीं कि जितना हम याद करेंगे उतना बाबा भी याद करेगा। कितनी लाइन क्लियर करता है, मैं क्यों याद करूं, क्यों ना याद करे भाई, क्यों मना किया बाबा ने कि मैं तुमको याद नहीं करूंगा। यही तो बात मना कर दी और आपने वही बात कह दी। बाबा कहते हैं मैं याद नहीं करूंगा, क्यों नहीं करेगा वो याद, क्यों मना कर रहा है याद करने से?
इसको कौन समझाए,
कौन समझाए इसको? मतलब हमें कारण तो पता लगे ना, उसने कुछ कहा तो होगा ना, मैं क्यों याद करूं, मना किया बाबा ने कि मैं तुम्हें याद नहीं करूंगा, क्यों मना किया?
जब हम उसका कहना नहीं मानेंगे तो मना करेगा वो?
नहीं, आप कहना मानोगे पर तो वो नहीं मानेगा आपका कहना। नहीं अटका नहीं रहा, बात यहाँ आती है, बाबा कहते बच्चे तुम तो हो बिगड़े हुए, और बिगड़े हुए का कहना मैं मानू तो मुझे तुम बिगाड़ी दोगे, फिर तो मैं सुधरूंगा कैसे? इसलिए मैं तुम्हारा कहना नहीं मानूंगा, मैं तो सुधरा हुआ हूँ, तुम्हें मेरा कहना मानना है, मैं तुम्हारा कहना नहीं मानूंगा। याद करना माना, कहना मानना। चाहे तुम मुझे नौकर बना लो, मालिक बना लो, जो मर्जी आए बना लो, कहना तुमने मेरा मानना है, मैंने तुम्हारा कहना नहीं मानना। इसलिए बाबा कहते हैं मैं तुम्हें याद नहीं करूंगा, मैं तुम्हारा कहना नहीं मानूंगा। बाप को कोई पाप थोड़े काटने हैं, और आप तो मेरे को पाप काटने क्या, तुम तो मेरे को पाप में फंसा दोगे, ठीक है कि नहीं? अभी तुम यहाँ बैठे हो पावन बनने के लिए, शिव बाबा भी यहाँ हैं, उन्हें अपना शरीर तो है नहीं, किराए पर लिया हुआ है, तुम्हारी बाप से प्रतिज्ञा की हुई है, आपने प्रतिज्ञा की थी बाबा आप आएंगे तो हम आपके बन नई दुनिया के मालिक बनेंगे, अपने दिल से पूछते रहो, ये तो जानते हो बुद्धि योग की लिंक घड़ी घड़ी बाप से टूट जाती है, बाप जानते हैं लिंक टूटेगी फिर याद करेंगे फिर टूटेगी। बच्चे नंबर वार तो पुरुषार्थ करते ही हैं, अच्छी रीति याद में रहें तो इस डिनेस्टी में आ जाएंगे, इस डिनेस्टी में आ जाएंगे। अपनी जांच करते रहो, डायरी रखो, सारे दिन में हमारा बुद्धि योग कहां कहां गया, तो फिर बाप समझाएंगे। आत्मा में जो मन बुद्धि है वे भागती है। आत्मा में जो मन बुद्धि है वे भागती है। बाप कहते हैं भागने से घाटा पड़ जाएगा, भागने से घाटा पड़ जाएगा, मुझे याद करने से बहुत फायदा है, बाकी तो नुकसान ही नुकसान है। याद करना है मुख्य एक को, अपने अंदर खबरदारी रखनी है, अपने अंदर खबरदारी रखनी है, कदम कदम पर फायदा, कदम कदम पर फायदा, कदम कदम पर घाटा, क्योंकि हर कदम में या तो फायदा होगा और या घाटा होगा। अब आपकी मर्जी है, मेरी श्रीमत पर चलेंगे तो हर कदम हर कर्म में आपका फायदा है, नहीं तो आपका घाटा है। 84 जन्म देहधारियों को याद किए कर घाटा ही पाया, एक एक दिन होकर 5000 वर्ष बीत गए, एक एक दिन बीतते बीतते घाटा ही हुआ ना। अभी बाप की याद में रहे फायदा करना है, ऐसे विचार सागर मंथन कर ज्ञान रत्न निकालने हैं। बाप की याद में एकाग्र चित हो लगना है, कोई बच्चों को कोड़ियां कमाने की चिंता रहती है, कई बच्चे उनको पैसे और कमाएं और कमाएं और कमाएं, माया धंधे आदि के विचार ले आती है, धनवान को तो बहुत विचार आते हैं, बाबा क्या करे, बाबा का कितना अच्छा धंधा था, धक्के आदि खाने की दरकार ही नहीं थी, कोई व्यापारी आता था तो मैं पूछता था पहले ये तो बताओ व्यापारी हो या एजेंट हो, हिस्ट्री उनका इतिहास पूछता था, तुम्हें धंधा आदि करते बुद्धि का योग बाप से रखना है। अभी कलयुग पूरा हो सतयुग आता है, पतित तो सतयुग में जाएंगे ही नहीं, पतित तो सतयुग में जाएंगे ही नहीं, जितना याद करेंगे उतना ही पवित्र बनेंगे, अर्थात जितना कहना मानेंगे उतना पवित्र बनेंगे, प्योरिटी से धारणा अच्छी होगी, पतित ना याद कर सकेंगे और ना धारणा कर सकेंगे। कोई की तकदीर अनुसार समय मिलता है, पुरुषार्थ करते हैं, कोई को समय ही नहीं मिलता, याद ही नहीं करते, जिसने जितनी कोशिश कल्प पहले की है उतनी करते हैं, हर एक को अपने से मेहनत करनी है, कमाई में घाटा पड़ता था तो आगे कहते थे ईश्वर की इच्छा, आगे क्या कहते थे ईश्वर की इच्छा, अभी कहते हैं ड्रामा, जो कल्प पहले हुआ वे होगा, ऐसे नहीं अभी 4 घंटा याद करते हो तो दूसरे कल्प में जास्ती करेंगे, नहीं नहीं, शिक्षा दी जाती है अभी पुरुषार्थ करेंगे तो कल्प कल्प अच्छा पुरुषार्थ रहेगा, जो तो जांच करो बुद्धि कहां कहां जाती है, मल युद्ध में बड़ी खबरदारी रखते हैं, मल युद्ध होता है आपने सामने की लड़ाई, अच्छा रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार गुड नाइट, गुड नाइट, हम बच्चों की भी बाप दादा को गुड नाइट या नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, नंबर एक बुद्धिवान बनने के लिए याद से अपनी बुद्धि का को पारस बनाना है, बुद्धि इधर उधर भटकानी नहीं है, बाप जो सुनाते हैं उस पर ही विचार करना है, बस भ्रमरी बन भू भू कर नर्कवासी बने हुए कीड़ों को देवी देवता बनाने की सेवा करनी है, शुभ कार्य में देरी नहीं करनी है, अपने भाई बहनों को बचाना है, अपने भाई बहनों को बचाना है, वरदान समानता की भावना होते भी हर कदम में विशेषता का अनुभव कराने वाले विशेष आत्मा भाव, हर बच्चे में अपनी अपनी विशेषताएं हैं, विशेष आत्माओं का कर्म साधारण आत्माओं से भिन्न है, विशेष आत्माओं का कर्म साधारण आत्माओं से भिन्न है, हर एक में भावना तो समानता की रखनी है, समानता की रखनी है, लेकिन दिखाई दे कि ये विशेष आत्माएं हैं। विशेष आत्माएं अर्थात विशेष करने वाली, सिर्फ कहने वाली नहीं, उनसे सबको फीलिंग आएगी कि ये स्नेह के भंडार हैं। हर कदम में, हर नजर में स्नेह अनुभव हो, यही तो विशेषता है, यही तो विशेषता है। स्लोगन है सृष्टि की कयामत के पहले, इससे पहले कि सृष्टि समाप्त हो, कयामत, हां जी, उस कयामत के पहले अपनी कमियों और कमजोरियों की कयामत करो। सृष्टि कयामत से पहले अपनी कमियों और कमजोरियों की क्या करो, कयामत, मतलब सृष्टि खत्म होने से पहले अपनी सारी कमियां कमजोरियां खत्म करो। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।